मेरे जिगरी दोस्तों नमस्कार। आज 17 जनवरी 2020 है, दिन है शुक्रवार और आज के इस AFEIS के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों जब मैं MA प्रीवियस में पढ़ रहा था तो उस समय हिंदी लिटरेचर की एक पत्रिका निकलती थी, कहानियों की वो पत्रिका थी सारिका, कमलेश्वर जी जिसके संपादक थे, शायद आप लोगों ने नाम सुना हो। और जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं और अगर साहित्य से वो थोड़ी भी रुचि रखते हैं तो डेफिनेटली उन्होंने इस पत्रिका का नाम जरूर सुना होगा। उसका नाम था सारिका। उसमें एक छोटा सा नाटक छपा था और उस नाटक का शीर्षक था थैंक यू मिस्टर ग्लाड। और वो नाटक इतना जबरदस्त था कि उसकी ढेर सारी प्रतियां मैंने उस समय खरीदी थी और अपने दोस्तों को दी थी कि उन्हें भी यह नाटक पढ़ना चाहिए। तो आप सोच रहे होंगे कि क्या मैं उस नाटक के बारे में बात करने जा रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं। दरअसल यह शीर्षक मुझे इसलिए याद आया कि आज मैं जिस विषय पर आपसे बात करने जा रहा हूं उसका शीर्षक मैंने दिया है थैंक यू मौसा जी। बड़ा फनी सा शीर्षक है ना, थोड़ा सा मजाकिया सा शीर्षक है, लेकिन जो बात है वो मजाक की नहीं है। दोस्तों आइए अब इस विषय पर कुछ बातें करते हैं। देखिए अलग अलग त्योहार आते हैं, किसी का बर्थडे आता है, किसी की मैरिज एनिवर्सरी आती है, न्यू ईयर आता है, दिवाली, होली, पता नहीं कौन कौन से त्यौहार आते हैं और उन त्यौहारों पर आप अपनी शुभकामनाएं भेजते हैं और या अपनी बधाइयां भेजते हैं। और सच पूछे तो समय शुभकामनाओं और बधाइयों का एक प्रकार से सैलाब सा आ जाता है। मुझे लगता है कभी कभी कि ऐसा ना हो कि मोबाइल क्रैश कर जाए और इसकी अब मेमोरी इतनी न रह जाए कि वो आने वालों को रिसीव कर सके और जो आप भेज रहे हैं उसको वहां तक पहुंचा सके। लेकिन उसकी क्षमता काफी होती है और लगातार आपके पास शुभकामनाएं और बधाई आती रहती हैं और बदले में फिर आप भी करते रहते हैं। बहुत अच्छी बात है, कम से कम इसी बहाने हम अपने प्रियजनों को याद तो कर लेते हैं, या यूं कह लीजिए कि उन्हें अपनी याद दिला देते हैं कि भैया ठीक है मैं भी हूं और तुम्हें याद कर रहा हूं। हालांकि अब इस पर भी अविश्वास होने लगा है, आप लोगों को भी अविश्वास सा होने लगा होगा क्योंकि पता लगा कि आपने किसी का मैसेज कट करके और उस मैसेज को फिर एकत्र अब थोक के भाव भेजना शुरू कर दिया। थोक के भाव आप भेज रहे हैं, वही वही चीज सबको जा रही है। सामने वाले भी सोचता है यार ये तो बना बनाया मामला है, क्या याद करना क्या नहीं करना, उसके मोबाइल में व्हाट्सएप में सारे नंबर पड़े होंगे और उसने बटन दबा दिया चला गया, उसको याद भी नहीं होगा कि मैंने किस किस को भेजा है। और ये आज की एक बहुत कड़वी सच्चाई भी है कि मुझे कोई याद कर रहा है इसके माध्यम से, इस पर भी शक होने लगा है। सोच करके देखिए, अगर आप इमोशनली होकर के सोचिए तो आप उस मैसेज पर विश्वास नहीं कर सकते कि सच में वो आपके लिए भेजा गया। उसमें कुछ एक्सक्लूसिवनेस नहीं है, उसमें आपका नाम ही नहीं है, उसमें आपका कुछ भी नहीं है, सीधे सीधे वो बटन वो टच कर दिया गया है और खत्म हो गई बात। तो अपने तक जो मशीन है वो अपना काम कर रही है, यानी कि हमारी भावनाएं भी अब मशीनीकृत होती चली जा रही हैं। और सच पूछे तो जब मेरे पास भी जब मैसेजेज आते हैं तो कुछ इसी तरह का एहसास होता भी है, है ना। एहसास तो तब बदले जब आपको उसके लिखे हुए शब्दों में, अक्षरों में, भावों में, अर्थों में कहीं खुद आप दिखें कि नहीं नहीं इसने कम से कम मेरा नाम तो लिखा, या इसने कम से कम और कुछ भी नहीं तो मेरे लिए एक मैसेज तो तैयार किया, मेरे नाम से ही तैयार किया, भले ही वो बहुत ही सामान्य तरीके का ही मैसेज क्यों ना हो, लेकिन उसने कुछ सोचा। मैं कम से कम उसके दिमाग की स्मृति में 15 सेकंड तक तो मौजूद रहा, लेकिन दोस्तों वो सब भी खत्म हो गया है। चलिए ये तो इसका एक पक्ष हुआ, लेकिन इसका जो दूसरा पक्ष है जो मुझे और भी ज्यादा चिंतित करता है इस पहले पक्ष की तुलना में, वो ये है कि आप किसी को मैसेज भेज दीजिए, राइट। तो जब आप व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हैं, है ना, तो अब दो स्थितियां होती हैं। ज्यादातर मैसेजेस के बारे में तो आपको पता लग जाता है कि उसने मैसेजेस देख लिए होंगे, है ना, क्योंकि आपकी यहां जो आपने भेजा था वो एक तो डबल राइट का निशान आ जाता है तो आप समझ जाते हैं कि भैया उस तक पहुंच गया, और जैसे ही वो उसे खोल करके देखता है तो इसका कलर चेंज हो जाता है, ब्लू हो जाता है, यानी कि उसने देख भी लिया। तो पहुंच भी गया और देख भी लिया तो आपके दिमाग में कोई शक नहीं रह जाता। चिट्ठी के जमाने में तो शक ही बना रहता था कि भैया उसको मिली भी वो चिट्ठी की नहीं मिली, तो चलिए आप अपने को थोड़ा सा दिलासा दिला सकते हैं कि भैया नहीं मिली होगी यार, नहीं तो उसने जवाब जरूर दिया होता। लेकिन यहां पता लगा वो मिल भी गई है, पता लगा कि मिल ही नहीं है बल्कि उसने उसे खोल करके देख भी लिया है। और अब आप अपने को यदि उसका प्रियजन समझते हैं या उसे अपना प्रिय मानते हैं तो उम्मीद करते हैं कि अब वो रिप्लाई करेगा, इसके बदले में कुछ ना कुछ तो कहेगा। आप इंतजार करते रह जाते हैं, कोई रिप्लाई नहीं मिलता, कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता। और ऐसा एक दो लोगों के साथ नहीं होता, बहुत से लोगों के साथ हो जाता है, बहुत से लोगों के साथ हो जाता है। आप प्रतीक्षा करते रहते हैं और प्रतीक्षा करते ही रह जाते हैं, आपकी वह प्रतीक्षा पूरी ही नहीं होती, मन उदास हो जाता है, कहीं ना कहीं खीज का भी एहसास होता है। फोन की घंटी बजती है, आप एकदम उत्साहित होकर के उठते हैं कि यार नहीं नहीं उसने मैसेज नहीं, उसने सोचा होगा कि मैं फोन ही करता हूं, और आप उठाते हैं तो पता लगता है कि किसी दूसरे का फोन था, वो बेचारा आपको फोन कर रहा है लेकिन आपके मन में झुंझलाहट भरी हुई है, तो आप उसे ठीक से बात नहीं करते। अब उसका तो क्या दोष है, क्योंकि मन में झुंझलाहट है तो आप उस आपकी जो झुंझलाहट है आपकी आवाज में वहां तक पहुंच जाती है। दोस्तों ये क्या है? तो यहां थैंक यू मौसा जी क्या है? थैंक यू मौसा जी जो बेसिकली है, मैंने जब इस तरह के मैसेज भेजे अभी न्यू ईयर पर तो बहुत से मैसेजेस के जवाब दिए, वैसे तो दुनिया भर के आते रहे लोगों ने अपनी अपनी तरफ से भेजा और मैंने उनको रिप्लाई किया, लेकिन जिनको मैंने भेजा अपनी तरफ से भेजा उनमें से बहुत से लोगों ने, नो डाउट सबने लगभग देखे। कुछ लोग तो अपना कुछ ब्लॉक भी कर देते हैं तो आपको पता भी नहीं लगता है कि इसने देखा कि नहीं देखा, क्योंकि उसका कलर नहीं बदलता है। तो मैंने जब पता किया तो पता लगा कि हाँ कुछ ऐसा सिस्टम है कि आपको पता नहीं लगेगा कि उसने देखा या नहीं देखा, भले उसने देख लिया हो। मैं कहा कि चलिए भैया, अगर कोई नहीं बताना चाहता है, छिपाना ही चाहता है, तो अब उसको क्या किया जा सकता है। लेकिन बहुत लोग देख भी लेते हैं लेकिन देख करके वो चुपचाप बैठे रहते हैं। ये जो थैंक यू मौसा जी हैं, आप समझ लीजिए कि उससे मेरा मौसा जी का संबंध रहा होगा, मतलब मैं उसका मौसा जी हूं। मैंने उसे मैसेज भेजा और उसका तुरंत मैसेज आ गया, थैंक यू मौसा जी, और फिर उसने अपनी बात लिखी। यानी कि उसने एक तो उसे रिकॉग्नाइज किया, रिकॉग्नाइज ही नहीं किया बल्कि उसे ऑनर भी दिया और अपनी तरफ से कहा थैंक यू मौसा जी। अदरवाइज वह भी बना बनाया मैसेज भेज सकता था। और मित्रों उससे भी जो बड़ी बात है, देखिए ये जो जिसने मुझे थैंक यू मौसा जी लिखा, ये अमेरिका में पढ़ रहा है, अमेरिका में पढ़ रहा है, उसको यहां से गए 6 महीने हुए हैं। इसका नाम है आर्यमन और ये मेरी सबसे छोटी वाली जो सिस्टर इनला है जिसे हम लोग प्यार से डॉली के नाम से बुलाते हैं, उनका बड़ा बेटा है, वो इंजीनियरिंग करने वहां गया हुआ है। तो मुझे लगा कि यार इसने ऐसा क्यों किया। मैं वास्तव में ऐसी छोटी छोटी घटनाओं पर मैं विचार करता हूं, तो क्या इसलिए किया क्योंकि अमेरिका चला गया है तो उसको बहुत याद आ रही होगी? ऐसा भी नहीं होता है, बहुतों को याद नहीं आती है, आती है तो उनकी अपनी व्यस्तताएं हैं। हम यही कहते हैं ना कि वहां जाकर के लोग भूल जाते हैं, नीरस हो जाते हैं, नहीं ये कारण नहीं था। दरअसल कारण यह था कि वह वहां जाने के बाद बहुत डिसिप्लिन हो गया है, बहुत डिसिप्लिन हो गया है, चीजों को बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से लेता है और वो जानता है कि व्यक्ति की गरिमा क्या होती है, वो जानता है कि व्यक्ति की जो डिग्निटी होती है वह क्या होती है। अगर किसी ने मुझे मैसेज भेजा है तो उस मैसेज का सम्मान करने के लिए बहुत जरूरी है, और बताने के लिए कि मैंने आपके मैसेज का सम्मान किया है बहुत जरूरी है कि मैं रिप्लाई करूं, भले ही मेरा रिप्लाई कितना भी छोटा क्यों ना हो, लेकिन वह उत्तर मेरे द्वारा अगर गढ़ा गया है तभी वह उसके मन में मेरे प्रति विश्वास पैदा कर सकता है, अदरवाइज वह मशीन होगा और उस लड़के की उम्र कोई बहुत ज्यादा नहीं है। तो दोस्तों क्या सच में वातावरण हमारे मस्तिष्क को इतने गहराई से प्रभावित करता है? यस, इस पर कोई संदेह करने की कोई बात ही नहीं है, हमारा वातावरण हमारी चेतना को प्रभावित करता ही करता है। लेकिन ये सब जीवन की ऐसी व्यावहारिक बातें हैं जिनके लिए हमें किसी वातावरण की जरूरत नहीं है, एक सामान्य समझ ही इसके लिए पर्याप्त होती है। तो दोस्तों मैं आप सबसे ये अर्ज करना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति अगर आपको थोड़ा भी तरजीह दे रहा है, थोड़ी भी प्राथमिकता दे रहा है, तो आपको चाहिए कि आप बढ़कर उसे उसके द्वारा दी जाने वाली प्राथमिकता से कई गुना ज्यादा प्राथमिकता दें, तरजीह दें, और यही करना सही मायने में उसकी गरिमा का सम्मान करना होता है। और ऐसा ही करके आप उसकी चेतना और उसके दिल की गहराइयों में उतर करके वहां अपने लिए अपेक्षाकृत अधिक समय के लिए टिके रह सकते हैं। तो मित्रों, आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही। दो दिनों के बाद फिर आप सबसे मुलाकात होगी और बातें होंगी। तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।